اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
اگر آپ پہلی بار کامیاب نہیں ہوتے تو آپ ذہنی طور پر ٹھیک ہیں تامی، اور پھر آج رات آپ جب یہاں سے جائیں گی تو آپ پہلے کی نسبت جب آپ یہاں آئے تھے زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو آج اپنے آپ کو بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ 50% لوگ، اور شاید آپ میں سے کچھ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ اپنا ہاتھ بھی کھڑا نہیں کر سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم احساس جرم میں مبتلا رہنے کے لیے نہیں بنے۔ خدا نے ہمیں اس لیے تخلیق نہیں کیا، اور نہ ہی ہماری بناوٹ ایسی ہے کہ ہم احساس جرم کے ساتھ زندگی گزاریں، اور احساس جرم ہماری صحت پر بہت ہی برے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جب ہم احساس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز بننا شروع ہو جاتے ہیں جس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار نفسیاتی مریضوں کے ہسپتال میں کچھ لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے گئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور میں نے وہاں بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ سب میرا قصور تھا کیا دھرا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ گناہ کرنے سے پہلے ہی معاف کیے جا چکے ہیں، کیونکہ یسوع نے ہماری سب غلطیوں اور کمزوریوں کے لیے پہلے سے ہی ایک بھاری قیمت ادا کر دی ہے۔ ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مڑ کر واپس درست سمت میں چلنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا نے جو مہیا کیا ہے اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم اکثر اوقات بہت سا وقت خدا سے مانگنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن جو مہیا ہے اسے قبول کرنے سے متعلق جانتے بھی نہیں۔ آج رات میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں، کم از کم دن میں 3 بار خدا سے بلند آواز میں کہیے، خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اور پھر رک کر ان الفاظ کو اپنے اندر اتاریں۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے جب میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو، جن سے میں گزری، بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے خود سے بہت برسوں تک نفرت رہی۔ آج رات یہاں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ خود کو پسند نہیں کرتے، آپ اپنا بہت سا وقت دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے اور دوسروں جیسا بننے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ابلیس نے آپ کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ آپ کوئی نرالی چیز ہیں، کیونکہ آپ باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ خیر، خدا کا شکر ہے کہ آپ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ دنیا کس قدر اکتا دینے والی جگہ ہوتی اگر ہم سب ایک جیسے ہوتے۔ اور میں نے یہ سنا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اسے سمجھ نہ سکی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کچھ سن سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ اور میں خدا کے کلام کو بلند آواز میں بولنے اور اس کا اقرار کرنے میں بہت دلیر ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی آپ کچھ سنتے ہیں، حتیٰ کہ آپ خود اپنی آواز سنیں، تو آپ کو اپنا ذہن تازہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور جب بھی آپ اچھی طرح اقرار کرتے ہیں یا بری طرح، وہ الفاظ آپ کے کانوں میں پلٹ کر آتے ہیں اور آپ کے اندر اتر جاتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، وہ سب سے جو دوسرے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، کہیں زیادہ اہم ہے۔ آمین۔ لیکن ایک چیز جس کو کرنے کے لیے خدا نے اس وقت میں میری رہنمائی کی، اور اس پر مجھے غالب آنے کے لیے کافی سال لگے، جس میں سے میں اپنے بچپن میں گزری تھی، لیکن ایک چیز جو میں نے کی، میں جاتی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی ایک بڑے آئینے میں، اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتی، خدا تجھ سے محبت کرتا ہے، اور آپ کو یہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے جب تک کہ آپ کو مکاشفہ نہیں مل جاتا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ چرچ میں سنتے ہیں، اور میں جوائل کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ نے شاید کسی بھی شکل میں اور ہر چرچ سروس میں آج آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اور آج رات جب میں اپنے پیغام سے متعلق سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ شروع کرنا ہے، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ آپ نے اسے کتنی بار سنا ہے، جب تک آپ کو سمجھ نہیں آ جاتی، آپ کو اسے زیادہ سے زیادہ سننے کی ضرورت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، کامل محبت جو صرف خدا ہمیں دے سکتا ہے۔ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हमारी खातिर अपनी जान दे, और जिस तरह उसने दुख उठाया वो यकीनन हमारी जिंदगी के हर तरह के हालात में हमारी फिक्र भी करेगा अगर हम उस पर भरोसा करें। आमीन। आप मजबूत हाथों में हैं। अच्छा है कि अभी हम कामिल नहीं हैं और गलतियां करते हैं। मत्ती की इंजील 22 बाब उसकी 36 से 39 में लिखा है, ऐ उस्ताद तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा, इसकी मानिंद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। लिहाजा मेरा ईमान है कि हमारे लिए खुदा का प्यार और उसने जो हमें दिया है वो हमारी जिंदगी में एक सर्कल है जो हमें खुदा के साथ काम करके मुकम्मल करना है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, हम उस मोहब्बत को कबूल करते हैं। एक मुतवाजन अंदाज में ये खुद को प्यार करने के बराबर है। हाँ, मैंने कहा अपने आप से प्यार करना चाहिए। एक मुतवाजन अंदाज में मैंने कहा अपने आप से प्यार करें। देखें, हम सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ गलत है, ये ऐसे है।
नहीं, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती।
मैंने ये नहीं कहा अपनी जात से मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। मैंने कहा अपने आप से प्यार करें। अगर खुदा हमसे प्यार कर सकता है तो यकीनन हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं। जब मैं नई नई खुदा में चलना शुरू हुई तो अपने एक दोस्त के साथ एक चर्च में इबादत के लिए गई कि दुआ करूं, तो पास्टर ने मेरी दोस्त से पूछा कि मैं किस बात के लिए दुआ करना चाहती हूं। उसने कहा, मैं खुद से नफरत करती हूं। और उसका बड़ा अजीब रद्द अमल था। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, तुम क्या समझती हो, तुम होती कौन हो? जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि हमारी खातिर दुख उठाए और मरे, और उसने ऐसा किया, और उसने आपसे गैर मशरूत प्यार किया, आप कौन होती हैं खुद से नफरत करने वाली? अगर आप इसको इस अंदाज में ही देखें, बाज़ औक़ात हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा ने हमारे वास्ते मसीह में क्या किया। मैं दरअसल आज होने वाली प्रस्तिश के दौरान ये सब सोच रही थी। मैं इस मौजू पर तालीम दूंगी कि नए सिरे से पैदा होने का क्या मतलब है, और मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, ओह मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं पहले ही नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर चुकी हूं। लेकिन मैं समझती हूं कि ज्यादातर लोग, हत्ता कि वो नए सिरे से पैदा शुदा हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनके पास क्या है। मैं समझती हूं कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा फतेहमंद हों अगर हम ये बात समझ लें कि इस बात के क्या मायने हैं कि खुदा हमारे अंदर रहता है और वो हमारी जिंदगी में शराकत दार है। और अगर हम इस गीत के बोल को अच्छी तरह समझ जाएं जो आज रात यहां हमने गाया कि इसके मायने क्या हैं, वही कुव्वत जिसने उसको मुर्दों में से जिंदा किया हमारे अंदर रहती है। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, ना कि हर वक्त इन चीजों से मुतालिक कि हमारी जिंदगी ठीक नहीं। अगर आप में कुछ गलत है तो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, खुदा आपको खुद बता देगा। लेकिन अगर वो आपको मुजरिम ठहराता है तो इसका मतलब आपको मलामत करना नहीं। अगर खुदा किसी बात की निशानदेही करता है तो आपको एहसास जुर्म में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, वरना आप इस पर गालिब नहीं आ सकते। खुदा उस वक्त तक आप पर आपके गुनाह को जाहिर नहीं करता जब तक कि वो आपकी मदद करने को तैयार ना हो कि आप उस पर गालिब आए। आमीन। आप में से कितनों ने ऐसा किया? आपको अपने किसी गुनाह से मुतालिक एहसास हुआ, आपने कोई पैगाम सुना या आपने कुछ पढ़ा या आपने महसूस किया, हाँ, और फिर आप एहसास जुर्म में मुब्तला हो गए। ये खुद को दुरुस्त करना नहीं, इससे मुराद ये कहना है, ऐ खुदावंद तू ठीक कहता है। और आप जानते हैं, दुरुस्त होना एक नई सिमत में चलना है, ये रद्द किया जाना नहीं। याद रखें, दुरुस्त होने का मतलब रद्द किया जाना नहीं, ये एक नई सिमत में चलने का नाम है। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वह हमसे इस कदर मोहब्बत करता है कि हम पर जाहिर करता है कि हम में बुराई क्या है। और क्या आपको ये बुरा नहीं लगेगा कि आपको इसी हालत में छोड़ दिया गया है कि अब आप कभी बदल नहीं सकते और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? मैं चाहती हूँ, ऐ खुदा मुझ पर मेरी बदी को जाहिर कर, मुझे एहसास दिला मेरी जिंदगी में जो भी बुराई है मुझे दिखा। आप जानते हैं क्यों? इसलिए कि खुदा वाकई मुझसे प्यार करता है। मैं पहले ऐसा नहीं सोचती थी, मैं सोचती थी ओ चॉइस में एक और बुराई पैदा होगी, लेकिन फिर मैंने बिलाखिर सीखा कि ये सब खुदा हम पर जाहिर करता है क्योंकि वह हमसे मोहब्बत करता है। आमीन। सुनिए, पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, और अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं रखते तो आप किसी और से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। मुझे ये बात सीखने में बड़ा वक्त लगा। मैं चर्च जाकर मोहब्बत में चलने से मुतालिक बहुत कलाम सुनती थी और लोगों से मोहब्बत करने की बेहद कोशिश करती, और वो मुझे पागल कर देते। मैं उन सबको तब्दील करना चाहती थी। सुनिए, आप हंस रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं ये सच है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूं लेकिन वो बदल नहीं रहे। खुदा ने मुझे सिखाया क्योंकि तू खुद से मोहब्बत नहीं करती। आपने मुझे ये पहले भी कहते सुना होगा, लेकिन फिर से सुनिए, आप किसी को वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। आप में से कुछ को खुद पर रहम खाने की जरूरत है, और अगर आप खुद पर रहम करेंगे तो आप इस लायक होंगे कि आप दूसरों पर रहम करें। आप में से कुछ को आगे बढ़कर खुद को माफ करने की जरूरत है इन सारी बातों के लिए जो आपको अपने खिलाफ लगती हैं, क्योंकि खुदा ने पहली ही बार में आपको माफ कर दिया था जब आपने उससे माफी मांगी थी। आमीन। खुदा से उन चीजों की माफी मांगना बंद करें जो पहले ही भूल चुका है। बाइबल में लिखा है, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। खुदा से उन चीजों से मुतालिक बात करना बंद कर दे जो वो पहले ही भूल चुका है। सुनिए, यहां पर आज रात किसी को आजाद होने की जरूरत है। रोमियो 5:8, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। जरा तसव्वुर करें, जब हम मैखाने में हर तरह के बुरे लोगों के साथ हर तरह के बुरे कामों में घिरे हुए होते हैं, हर तरह की गैर इखलाकी सरगर्मियों में खुदा से बिल्कुल गाफिल, यसु हमारे लिए मुआ। वो हमसे इसलिए प्यार नहीं करता कि हम इस काबिल हैं कि हमें प्यार किया जाए। वो हमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो खुद मोहब्बत है, और मोहब्बत अपने आप को हर सूरत जाहिर करती है, और ये उसे ही करना था। मोहब्बत हर सूरत खुद को जाहिर करती है। बाइबल में मोहब्बत पर और भी बहुत से हवाला जात हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप पढ़ें, लेकिन मैं चाहती हूं कि जबूर 139 की 2 आयत को पढ़ें, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूंगा। ये दाऊद कह रहा है, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूं, तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे दाऊद कह रहा है कि मैं खूबसूरत तौर से बना हूं। जी, जब भी मैं आपको अपने और आपके बारे में अच्छा सोचने के लिए कहती हूं तो आप सब खामोश हो जाते हैं। आप खास लोग हैं, आप लासानी हैं, और आप कमाल हैं, क्योंकि खुदा कोई बुरी चीज नहीं बनाता। आप में से कितने यकीन रखते हैं कि खुदा ने आपको तख्लीक किया? ठीक है, आप में से कितने ईमान रखते हैं कि खुदा जबरदस्त खुदा है और जबरदस्त चीजें करता है? ठीक है, तो फिर आप इसमें क्यों शामिल नहीं? ये एक अच्छा सवाल है, शुक्रिया भाई। अब आज रात मैं कुछ कहना चाहती हूं कि आप आज घर सर खुजाते हुए जाएं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जॉन मैक्सवेल ने कहा, आप नाकाम हो सकते हैं। इससे उसकी क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जब हम किसी बात में नाकाम होते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो दरअसल आगे चलकर हमारी जिंदगी में और खुदा के साथ हमारे ताल्लुक में मददगार साबित होती हैं। लेकिन ये सुनिए, लेकिन जब तक आप अपनी नाकामियों और अपनी गलतियों पर पशेमानी का इजहार करते रहेंगे, आप इनसे कुछ भी नहीं सीख सकते, और आप इन्हें बार 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 दोहराते रहेंगे। मैं ये बात आपसे दोबारा कहूंगी और आपको ये सुनने की जरूरत है। ठीक है, यूं कह लीजिए, आप कल आते हैं और मैं आपको जबान पर एक जोशीला कलाम सुनाती हूँ जो कि मैं कल नहीं करूंगी। यहाँ बैठा हर शख्स मुजरिम ठहरेगा। आप अपने जहन को तैयार कर लो, मैं अपने अल्फाज में एहतियात बरतूंगी। ऐ खुदा, मैंने ये सुन लिया और हाँ आमीन, लेकिन आप घर जाकर जो कुछ आपने कहा और जिस तरह से आपने लोगों के साथ सुलूक किया, एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो ये पशिमानी आपको वो सीखने से रोक देगी जो आपको सीखने की जरूरत है। लिहाजा खुदा के फजल से बेहतरी की तरफ जाते हुए वो काम फिर नहीं करेंगे कि आपने सुना। जब तक आप अपनी माजी की गलतियों पर पशिमान रहेंगे, आप इनसे सबक नहीं सीख सकते, आप इनको बस दोहराते रहेंगे। ये एक बहुत गहरा सच है, शायद ये दोबारा कहने की जरूरत है। ये एक बहुत गहरा सच है क्योंकि देखिए, हम सोचते हैं कि हमें पशिमान होना चाहिए। खैर, बाइबल कहती है अपने गुनाहों पर अफसोस करो। मातम करने का एक वक्त है, लेकिन छोड़ देने और आगे बढ़ने का एक वक्त है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने गुनाहों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए और उन पर यूं मुस्कुरा देना चाहिए। फितरी तौर पर अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो आप मातम करेंगे। आपको एहसास होगा कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे उसे तकलीफ पहुंची है, लेकिन बहुत जल्दी आप उसके फजल को भी हासिल कर सकते हैं। इसका शुक्रिया करें कि आप पर यह जाहिर हुआ, आपको पशिमान होने की जरूरत नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं, जब तक आप अपने गुनाहों एहसास जुर्म का शिकार रहेंगे, आप उनसे कुछ सबक हासिल नहीं कर सकते। आप उन्हें दोहराते रहेंगे और उनको बार बार करते रहेंगे। आखिरकार आपको मेरी बात समझ आ गई, शायद आपने मुझे सुनना शुरू कर दिया है। क्या वो पीछे वाले मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, यहाँ एक और है। यह आपके मजहबी गुब्बारे में से हवा निकाल देगा। नाकामी हतमी और मोहलिक चीज नहीं। इसकी शुरुआत नहीं बल्कि इसका आखिर जिंदगी में फर्क पैदा करता है। सुनिए, नाकामी इंसानी हालत का एक हिस्सा है। गलती करना मामूल की बात है। कमजोरी एक हकीकी मसला है जो मेरे साथ था, क्योंकि मेरी माँ एक कमजोर किस्म की खातून थी। वो डरी हुई रहती थी और वो मेरे बाप से खौफजदा थी, और चूंकि उसको मालूम था वो मुझसे जिनसी ज्यादती करता है, लेकिन उसने मुझे बचाने के लिए कुछ ना किया। और मैं शुक्र करती हूं कि मैंने कभी अपनी माँ की बेइज्जती नहीं की, क्योंकि मैं इस बात को समझती थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं बेचारगी से नफरत करती थी और मैं पुर अजम थी कि मैं कभी ऐसी नहीं होंगी, कि मैं मजबूत बनूंगी और ऐसी चीजों के खिलाफ खड़ी होंगी। मैं आपको बताती हूं कि जब मैंने खुदा के साथ चलना शुरू किया और जब उसने मुझे वो बातें दिखाना शुरू की कि जिन्हें मैं उसके हवाले कर दूं और उसे मदद करने दूं कि उन पर गालिब आऊं, एक बच्ची की हैसियत से जिन हालात से गुजरी, मैं एक बहुत दुखी औरत थी और मुझे हर उस तरह की मदद की जरूरत थी जो मैं हासिल कर सकती थी, लेकिन मैं वो ले ना सकी अगर मैं नाकाम हो गई या मैंने किसी चीज की कोशिश की लेकिन अगर उसने काम ना किया। यह जाहिर है, अगर खुदा ने मुझे कुछ करने के लिए कहा जिसका मुझे यकीन है कि खुदा ने ही कहा है, और फिर ये पता चले कि ये तो खुदा ने नहीं कहा था, मैं नहीं जानती थी गलती कैसे करनी है। और मुझे याद है जब खुदा ने मुझसे कहा, हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे क्योंकि ये मैंने की, लेकिन खुदा ने कहा तुझमें कमजोरियां हो सकती हैं। अब आप सोचेंगे, खैर एक मिनट के लिए रुकिए। नहीं, आप जानते हैं कि आप लोगों को ये बताने जा रही हैं कि वो जैसी चाहें खामियों से भरी जिंदगी गुजार सकते हैं। नहीं, बात यह है, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो कोई आपसे बात नहीं कर सकता कि मकसद के तहत आपको गुनाह में ले जाए। मैं यहाँ पर खड़ी होकर आपको कुछ आजादी देती हूँ जो आगे चलकर आपकी जिंदगी में वो बनने में मदद देगी जो आप बनना चाहते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, आप अब से लेकर अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक कभी कोई खता नहीं करेंगे। मुझे अफसोस है इस बात में फर्क है, ये एक अहम बयान है, ये सुनिए। कमजोरी और बुराई में फर्क है। अगर आपके दिल में बुराई है तो आप खुदा के साथ मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप में कुछ कमजोरियां हैं, घबराए नहीं, उसने यीशु को इसीलिए भेजा। क्या हमें ये बात समझ नहीं आती? कि अगर हमारे अंदर कमजोरियां ना होती और हम सब कुछ कर सकते और हम हर तरह से मजबूत होते तो हमें फिर यीशु की जरूरत ना होती। वो तंदुरुस्तों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया। वो जो अपनी रूह में बीमार है, जिनके मसले मसाइल हैं, जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं। और ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। और हत्ता कि ये बात बहुत जबरदस्त है कि जब आप इतनी आजादी महसूस करें कि कह सकें, आप जानते हैं मेरा ख्याल है खुदा ने मुझसे बात की लेकिन मैं सुन ना पाई। ये कितनी जबरदस्त बात है जब आप खुले तौर से ये कहने के काबिल हो, मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहती हूं। इससे बहुत सी शादियां टूटने से बच सकती हैं। ये अल्फाज कितने जबरदस्त हैं, बजाय इसके कि आप बहस किए जाएं और जाहिर करने की कोशिश करें कि आप ठीक कह रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा डेविड इसी तरह का था। कुछ बरस पहले उसने कहा था, उसने कहा, आप जानते हैं दुरुस्त होने को बढ़ाकर पेश किया जाता है आप तकरार में से। ऐसा कुछ नहीं निकाल सकते जैसा कि आप समझते हैं कि आप निकाल लेंगे, लिहाजा बस अपनी गलती मान लीजिए और सॉरी कहिए। आप अभी तक इसको संजीदा नहीं ले रहे। सिर्फ एक शख्स यहां बाएं हाथ पर कुछ संजीदा लग रहा है। ठीक है, आइए कुछ लोगों पर नजर डालते हैं। दाऊद बादशाह जनाकारी और कत्लो गारत में पड़ गया लेकिन खुदा ने कहा मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है। अब इससे मुतालिक आपका क्या ख्याल है? और मेरा ख्याल है कि अगर आप आज ये समझ सकते हैं और अगर आप कुछ और जो मैंने कहा नहीं समझे, मैं जानती हूं इससे मेरी मदद होगी और मुझे उम्मीद है आपकी भी होगी। आप जानते हैं क्यों उसने दाऊद से मुतालिक ऐसा कहा? हत्ता कि दाऊद की जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब उससे गलतियां सरजद हुई, वो जिनाकारी में पड़ गया और फिर उसको छुपाने की कोशिश भी की। उसने बदसभा के शोहर को मरवा दिया और उससे मुतालिक झूठ बोला और उसने तौबा करने में पूरा एक साल जाया किया। वो उससे छुपता और भागता रहा। पत्रस से मुतालिक क्या ख्याल है? उसने मसीह का 3 बार इनकार किया फिर भी वो एक बहुत बड़ा रसूल बना। मैं महसूस करती हूं कि खुदा ने मेरे दिल में डाला कि दाऊद ने अपनी जिंदगी में बदी से ज्यादा नेकी की। और मैं समझती हूं खुदा हमारी पूरी जिंदगी को देखता है। एक चीज जिसने मुझे सीखने में मदद दी, आराम कैसे करना है। 2 साल पहले मैं तकरीबन टूट चुकी थी और सीखना पड़ा कि मैं सारी जिंदगी पागलों की तरह काम नहीं कर सकती। और एक बात जिसने मुझे आराम करने में मदद दी वो ये थी जो खुदा ने कही, जो कुछ अपनी पूरी जिंदगी में हासिल किया उस पर नजर करने के बजाय कि तूने आज क्या हासिल किया। इसमें कुछ बुरा नहीं अगर आप पूरा हफ्ता काम नहीं करते। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप कभी कभार सारा दिन सोफे पर बैठकर फिल्में देखते रहें। उस पर नजर करें जो आपने सारी जिंदगी किया, ना कि उस पर जो आज कर रहे हैं। आप में से कितने बुरा महसूस करते हैं जब आप आराम करते हैं? ठीक है, जब मैं बिंगो देखूंगी तो आप आजाद हो चुके होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूं आप अपनी तमाम जिंदगी में बुराई से ज्यादा अच्छाई करेंगे। ये बात दोबारा कहने के लायक है कि आप वो कुछ नहीं दे सकते जो आपके पास है ही नहीं। अगर खुदा की मोहब्बत को समझें और उसे कबूल करें, उसकी कामिल मोहब्बत को जो वो हमारे लिए रखता है, तो हम वो आसानी से दूसरों में बांटने के काबिल होंगे।